الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. إنما الأعمال بالنيات، أعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اس کلاس کو پڑھنے کی، سننے کی، اس میں شامل ہونے کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی اور اپنے آل و اولاد کی، آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کر سکیں، خود کو جو ہے وہ کفر کے کسی بھی احتمال سے بچا سکیں، دور رکھ سکیں. اس میں ہماری نیت ہرگز دوسروں کی تنقید کرنا یا دوسروں کو کافر قرار دینا، اس کا اہل بن جانا، یہ ہرگز ہرگز ہماری نیت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا دائرہ کار ہی نہیں ہے. یہ مفتیان حضرات کا دائرہ کار ہوتا ہے، بلکہ دارالافتاء اور بڑے بڑے مشائخ کا کرنے کا یہ کام ہوتا ہے. تو ہم بیسکلی اس مقصد سے ہرگز نہیں کر رہے ہیں. ہم تو ایمان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور ہم یہ بس جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کن چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے، یقیناً اسی وجہ سے، حضرت مفتی محمد شفیع رحمتہ اللہ علیہ نے اس کتاب کے ٹائٹل پیج کے اوپر ہی جو آیت مبارکہ نقل فرمائی ہے، اس کا تعلق جو ہے نا وہ بالکل یعنی ہمارے ساتھ ہے. اس کا تعلق ہمارے یعنی عوام الناس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، کہ جس نے، جو ایمان سے منکر ہوا تو اس کی ساری محنت ضائع ہو گئی. اس آیت کا سیاق و سباق، اس کا جو جو قرآن مجید کے اندر پوزیشننگ ہے نا، یہ پوزیشننگ ہی جو ہے وہ یعنی ہم سے خاص تعلق رکھتی ہے کہ یہ جو آیت ہے، یہ اللہ رب العزت نے احکامات، جو فرائض ہیں، جو احکامات ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. ٹھیک ہے، تو وہ جو بالکل آخری آیات ہے نا قرآن مجید کی، کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تو یہ جو بالکل آخری آیات ہے نا، یہ اسی کا حصہ ہے، یہ اسی کا حصہ ہے. یعنی جہاں پہ اللہ تعالیٰ حلال اور حرام کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہم نے تمہارے اوپر حلال کر دی، یہ چیز ہم نے تمہارے اوپر حرام کر دی، پھر وہیں پر آگے فرما رہے ہیں وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. تو ہوا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ جو ٹرم ہے نا قرآن مجید، یہ کافروں کے لیے ہی استعمال فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ الفاظ کافروں کے لیے استعمال فرماتے ہیں، صرف گناہگار مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کفار کے لیے. اسی وجہ سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر کیا فرمایا کہ جو شخص، وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو شخص ایمان لانے کی چیزوں کے، تفسیراً بریکٹس میں کیا فرماتے ہیں، ایمان لانے کی چیزوں کے ساتھ کفر کرے گا، تو ایمان لانے کی چیزوں کے ساتھ کفر کرے گا، کفر کا مطلب انکار کرے گا. ٹھیک ہے، تو آگے فرماتے ہیں تفسیراً حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی تفسیر کیا فرماتے ہیں، مثلاً حلال قطعی کی حلت کا انکار کرے گا. جو چیز قطعی طور پر حلال ثابت ہو چکی ہے تو اس کی حلت کا انکار کرے گا، کہے گا کہ نہیں، یہ حلال نہیں ہے، یہ تو حرام ہے. اور حرام قطعی کی حرمت کا انکار کرے گا. جو چیز قطعی دلائل سے حرام ثابت ہو چکی ہے تو اس کو جو ہے وہ حلال کہے گا، کہے گا نہیں، یہ تو حرام نہیں ہے، یہ تو حلال ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے ان کا انکار. ٹھیک ہے، बज़ाहिर जो अकायद की हम बात करते हैं ना, तो हमारे जहन में सिर्फ ये बात होती है कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है, और अल्लाह ताला हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है, अल्लाह ताला की कोई बेटियां नहीं हैं। ठीक है ना, ये अल्लाह ताला के बारे में अकायद है। ठीक है, कि हम क्या सोचते हैं अल्लाह के बारे में, और फिर आखिरत के बारे में अकायद है कि आखिरत में ऐसा होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यानी फिर यानी फरिश्तों के बारे में, मलाई अल्लाह के बाद जो है वो फरिश्तों का जिक्र आता है, तो फरिश्ते जो है वो ऐसे हैं और ये हैं और वो ये करते हैं और ये करते हैं, तो ये सब ये अकायद है। ठीक है ना, हम हुक्मों को अल्लाह ताला का हुक्म मानना, जो हराम है उसको हराम मानना और जो हलाल है उसको हलाल मानना, इसको अकायद में समझते ही नहीं है। हम इसका तज़किरा अकायद में करते ही नहीं है। अकायद में तज़किरा क्या करेंगे, जो अल्लाह, फरिश्ते और जो है वो आखिरत और किताबें और रसूल और बास बादल मौत, इसके बारे में जो हमारी सोच है उसको हम अकीदा कहते हैं। बिल्कुल बेशक वो है अकीदा, वो तो है अकीदा, लेकिन हुक्मों को मानना कि ये हुक्म है अल्लाह ताला का, उस पर अमल करना नहीं, अमल करना अकीदा नहीं है, वो तो आमाल में आता है। मानना, तस्लीम करना कि ये हराम है और तस्लीम करना कि ये हलाल है, ये भी अकायद में आता है। और ये वाली आयत जो है ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, अहकामात के कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुई है, हुक्मों के कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुई है। ठीक है, तो थान ने फरमाया कि मसलन हलाल कतई की हिल्लत का और हराम कतई की हुरमत का इनकार करेगा तो उस शख्स का हर नेक अमल गारत और अकारत जाएगा, हर नेक अमल उसका बेकार हो जाएगा और वो शख्स आखिरत में बिल्कुल ज़ियाकार होगा। ठीक है, तो ये दूसरा समझ लें कि ये दूसरा जो है ना वो शोबा है। पहला शोबा अल्लाह के बारे में, मलाइका के बारे में, व कुतुबी ही व रसूली ही व यौम आखिरी व कदर खैरी ही व शर ही मिन अल्लाह ताला। फिर उसके बाद जो है वो ईमान मुफस्सल क्या है, आमन तो बिल्लाही कमा हुआ बे असमाही ही व सिफात ही व कबिल तो जमी अहकाम ही, वह कबिल तो जमी अहकाम ही, और मैं कबूल करता हूं उसके तमाम अहकाम को, जिनको उसने करने का हुक्म दिया उनको मैं मानता हूं कि हाँ उसने करने का हुक्म दिया है, और जिसमें कि उसने ना करने का हुक्म दिया मैं उनको मानता हूं कि उसने ना करने का हुक्म दिया। ठीक है, तो अब ये हमारे लिए, हम दीनदारों के लिए, हम दीन पढ़ने वालों के लिए, दीन की क्लास लेने वालों के लिए कैसे रेलिवेंट है कि हमारे सामने कोई आकर के किसी हराम को हलाल बना करके पेश करे, किसी हराम फेल को हलाल बना करके पेश करे, तो हम उससे धोखा ना खा जाएं और हम भी उसको हलाल समझना ना शुरू कर दें, हालांकि हमारे पास कुरान की दलील हो, हदीस की दलील हो, हमारे पास हमारे अकाबरीन का फेल मौजूद हो, उनके अकवाल मौजूद हो, लेकिन 21st सेंचुरी के अंदर मॉडर्न इस्लाम, मॉडर्न इस्लाम राइट, उसके अंदर जो है वो हराम को जो है वो हलाल बना करके पेश कर रहे हैं, तो अब हम अच्छा ये कर रहे हैं तो हलाल ही होगा। नहीं भाई, आपको जब पता है कि ये किसी ने उसको हलाल नहीं कहा है, तो अब ये आज के दौर में अगर कोई दाढ़ी लगा करके आ जाए आपके सामने, जुब्बा पहन करके आ जाए आपके सामने, या किसी और तरीके से आपके सामने दीनदार शक्लो सूरत के अंदर और दीनदार आमाल के साथ आपके सामने आ जाए, और उस चीज को जो कि हराम है आपको भी पता है कि वो हराम है उसको हलाल बना करके पेश करे, तो आप उसको हलाल नहीं समझना शुरू कर सकते। अगर समझना शुरू कर देंगे तो ईमान से हाथ धो बैठेंगे और जितना किया कराया है उस सब के ऊपर पानी फिर जाएगा, सब के ऊपर पानी फिर जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट जो है ना ये हर वक्त अपने जहन में रखें, और इसी वजह से ये कड़वी गोली, ये जो किताब है ये कोई बहुत ही यानी हल्की फुल्की किस्म की किताब नहीं है, ये अच्छी खासी जो है वो दकीक, इसके अंदर अल्फाज भी हैं और यानी लैंग्वेज भी ठीक ठाक दकीक बन जाती है, तो इस वजह से इसको कड़वी गोली से ताबीर किया, तो कड़वी गोली भी फिर हमारे लिए हजम करना आसान हो जाएगा। अगरचे कि हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हम जो मुश्किल अल्फाज हैं, इबारत है, तो उसको अच्छे तरीके से समझा करके आगे बढ़ें, हत्ता कि अब तो ये भी फैसला किया है कि हर इबारत को आपके सामने पढ़ा भी नहीं जाए, क्योंकि कुछ इबारतें इतनी मुश्किल हैं कि उनको समझाने में जो है ना वो वक्त भी बहुत ज्यादा लगेगा और फिर भी समझ में नहीं आएगी इस ऑडियंस को, कम अज कम वो उलमा के लिए छोड़ दें, उलमा का कि कुछ समझने की बातें होती हैं, عوام میں اتنا اس کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور اصل مقصود جو ہے وہ ہم یہی ہے کہ جو زندقہ ہے اور جو الحاد ہے نا, وہ چاہے کسی بھی شکل میں آ رہا ہو وہ قبول نہیں کیا جا سکتا ہے. اصل تو یہی پوائنٹ ہے. اسی کو مفتی شفیع رحمتہ اللہ علیہ نے بہت سارے دلائل کے ساتھ جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے. ٹھیک ہے, تو پچھلے جو جمعے کا بیان تھا تو اس کے اندر ہم نے یہ دلائل پڑھنے شروع کیے تھے ائمہ اسلام کی مزید شہادتیں اس ہیڈنگ کے انڈر. ٹھیک ہے, تو صفحہ نمبر 36 کے اوپر ہم نے یہ شروع کیا تھا کہ زندقے کی کفر ہونے پر سب سے پہلی اور قوی شہادت جو ہے وہ صحابہ کرام کا مانعین زکوٰۃ کو کافر قرار دینا اور ان سے باقاعدہ جہاد کرنا. دوسری سب سے قوی دلیل وہ مسیلمہ قذاب کا نبوت کا دعویٰ کرنا. اور یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے یہ پانچوں وقت کے نمازی تھے, ان کی منبروں سے اذانوں کی آوازیں آتی تھی اور ان اذانوں کے اندر محمد اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ بھی ہوتے تھے اس کے اندر. لیکن اس ایک وجہ سے جو ہے وہ زکوٰۃ کا انکار کرنا اور ان کا جو ہے وہ نبوت کے ختم ہونے کا انکار کرنا, بس اتنا کافی تھا صحابہ کرام کے ان کو کافر قرار دینے کے اوپر. لیکن وہ صحابہ کرام نے کافر جو قرار دیا, اگین وہی ریپیٹ کرنے والی بات کہ اکیلے کسی نے کافر قرار دے کر کے جہاد شروع نہیں کر دیا بلکہ اجماع صحابہ ہوا. ٹھیک ہے, صحابہ متفق ہو گئے, پھر پوری جماعت نے جو ہے وہ ان کے خلاف جہاد کیا. ٹھیک ہے, ایک مثال سے سمجھا دیں, کوئی آ کر حرام کو حلال بتا دے اس کی, کوئی آ کر حلال کو حرام بتا دے اس کی مثال. مثالیں تو بہت ساری آ رہی ہیں کتاب کے اندر اس کی. ٹھیک ہے, تو موسیقی آج کل کے دور میں جو ہے نا, یہ بات یہاں سے ہوگی موسیقی. ہاں, بلکہ یہ غامدی کی جو جو کیا نام ہے اس کا, غلام احمد غامدی کیا نام ہے اس کا, تو خیر غامدی کے نام سے مشہور ہے. تو اس نے تو اس طرح کی بہت ساری باتیں کی ہوئی ہیں, اور کتنے مسلمان ہیں جو کہ اس کو فالو کرتے ہیں, اس کے پروگرام سنتے ہیں اور اس کے اوپر وہ باقاعدہ ایمان لے کر کے آئے ہوئے. ٹھیک ہے, اور اس طریقے کے سوشل میڈیا کے اوپر, بلکہ آپ کے آپ کے نیشنل میڈیا کے اوپر اس قسم کے لوگوں کو باقاعدہ ٹائم دیا جا رہا ہوتا ہے, اور بڑے اچھے گیٹ اپ کے اندر اور بڑے اچھے جو ہے نا وہ سویٹ ٹاک کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگوں کو اپنے یہ مسائل, اپنے یہ نئی نئی جو ہے وہ اختراعات بتا رہے ہوتے ہیں. اور لوگ ہوتے ہیں, ہاں بھائی جب جب یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہی ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی بے شمار مثالیں آج کل موجود ہیں. کہیں میں نے بلکہ تھوڑا سا لکھا ہوا بھی اس کے, یعنی جہاد حرام ہے. ٹھیک ہے نا, کہ بھئی یہ کافروں کے ساتھ جہاد جو ہے نا, یہ نہیں ہے, یہ جائز ہی نہیں ہے. تو حلال کو حرام قرار دے دیا, یہ بھی اس غامدین شخص نے کیا ہے, اور حرام کو جو ہے وہ حلال قرار دے دیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی تو بہت ساری چیزیں ہیں, میرے سامنے بھی لکھی ہوئی نہیں ہے ورنہ مجھے, میں نے کیا ہوا ہے اس کا کہیں بھی نہیں چیزوں کو. بہرحال, تو جو ہم نے آخری بات پڑھی تھی پیج نمبر 38 کے اوپر تھی کہ حضرت حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب اقامت الدلیل میں اجماع کو سب سے بڑی قطعی دلیل قرار دیا ہے. تو ان کی عبارت لکھی پر ترجمہ کہ امت کا اجماع حجت قاطعہ ہے جس کا اتباع واجب ہے, بلکہ وہ تمام حجتوں سے زیادہ مؤکد ہے اور وہ غیر اجماع پر مقدم ہے. جس چیز پہ امت کا اجماع ہو گیا وہ ساری دلائل سے زیادہ, سارے دوسرے حجتوں سے زیادہ ایمفیسائزڈ حجت ہے. دیکھیں قرآن مجید کیا ہے, یہ بھی ہمارے ایک ساتھی سے ساتھیوں سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ بات بہت اچھا نقطہ اٹھایا کہ قرآن مجید کیا ہے. یہ صحابہ کا اجماعی تو ہے کہ یہ قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے, کہ صحابہ کی جماعت جس بات پر متفق ہو گئی تھی کہ بھئی یہ جو آیات ہیں نا یہی قرآن مجید ہے, اس کے اندر تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے یہ قرآن مجید نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو کسی صحابی کے پاس اگر کوئی ایسی عبارت ملتی جو کہ جماعت کے پاس جو عبارت موجود تھی اس سے کانفلکٹ کرتی تھی تو صحابہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے تھے, اور جو جماعت جس بات میں متفق ہوتی تھی اس کو جو ہے وہ قرآن کی آیت کے طور پہ کتاب کے اندر لکھ دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا, یہ جو تدوین وحی ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسیلمہ قذاب سے جہاد کے بعد, تو وہ اسی طریقے سے تو ہی ہے. حضرت زید رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ इसके ऊपर जायद बिन साबित रहता है उनको, इसके ऊपर जो है वो अमीर बनाया गया था, और उन्होंने इस तरीके से जमा करनी शुरू करी, जमा करनी शुरू करी कुरान मजीद की आयात। ठीक है, तो कुरान मजीद भी इजमा ही के जरिए से हम तक पहुंचा है, हदीस मुबारक भी इजमा ही के जरिए से हम तक पहुंची है, हदीस मुतवातिर जिसके ऊपर कई सहाबा मुत्तफिक हैं कि हाँ ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। ठीक है, तो वो हदीस मुतवातिर हो गई। कुरान मजीद क्या है? हदीस मुतवातिर है कुरान मजीद। ये आयात जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी तादाद में सहाबा ने सुनी, बड़ी तादाद में सहाबा से जो है वो गैर सहाबा ने सुनी, और इस तरीके से उम्मत के अंदर ये नकल हुई कि हाँ भाई ये अल्लाह ताला का कलाम है। तो कुरान मजीद की एक एक आयत ये दरअसल हदीस मुतवातिर है कि जिसके ऊपर सहाबा कराम की जमात का इत्तेफाक हो गया कि हाँ ये अल्लाह का कलाम है। ठीक है, तो इस अंदाज से देखा जाए तो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की इबारत समझना कोई मुश्किल काम नहीं है कि इजमा जो है ना वो हुज्जते कातिया है। अब इजमा के बारे में एक और भी कंफ्यूजन है, वो ये है कि इजमा जो है ना वो भाई उसका ताल्लुक जो है वो इन उमूर के साथ है। वो पॉलिटिक्स के अंदर इजमा नहीं होता, पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है ना, या कॉन्टेम्प्रेरी जो इश्यूज हो रहे हैं दुनिया के अंदर उसके ऊपर उम्मत का इत्तेफाक हो गया किसी बात के ऊपर, तो इसका मतलब है कि वो वही वही हक है। ठीक है, मिसाल के तौर पर कोरोना वायरस। ठीक है, अब कोरोना वायरस जो है कि ये जो है ना वो जो आपको मीडिया पे बताया जा रहा है वो सच है। ठीक है ना, जो मीडिया पे आ रहा है वो सच है कोरोना वायरस के मुताल्लिक। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है वो 80% मौलवी हजरात जो हैं वो कहें कि हाँ भाई वो जो मीडिया पे आ रहा है वो सच ही होगा, वो सच ही है, हम उसे इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें जो है वो मानना चाहिए, डॉक्टरों की बात माननी चाहिए। तो अब 80% उलमा जो है ना वो इस बात पे मुत्तफिक हो गए कि जी जो मीडिया पे आ रहा है वो सही है, तो इसको क्या कहेंगे? ये कोई इजमाए उम्मत हो गया कोरोना वायरस के बारे में, उम्मत का इजमा हो गया? नहीं भाई, ये कोरोना वायरस इज नॉट देयर फील्ड, ये उनकी फील्ड नहीं है, इसके अंदर उनका इजमा जो है ना ये इजमा नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसी तरीके से दुनिया के अंदर कोई और इवेंट्स हो रहे हैं, अब जो है वो 90% उलमा जो है वो उसके बारे में एक राय रखते हैं। ठीक है ना, दुनिया के इवेंट्स के बारे में, सियासी इवेंट के बारे में, ठीक है, या जो है वो कोई और इस किस्म का इवेंट हो, ठीक है ना, जो कि दुनिया में आजकल हो रहे हैं, मुस्तकिल होते रहते हैं, एक से एक तमाशे जो है वो आते रहते हैं, तो मौलवी सारे के सारे जो है वो 90% मौलवी हो या 95% मौलवी हो वो उसके बारे में एक राय रखते हैं, तो आप कहेंगे जी इजमाए उम्मत हो गया इसके ऊपर? जी नहीं, इजमाए उम्मत इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर रखा हमने जहन के अंदर, कुछ लोग इसके बारे में बड़े कंफ्यूज हैं। ठीक है, तो आगे फरमाते हैं कि आइम्मा इस्लाफ मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फुकहा और मुतकल्लिमीन सब के सब इस मसले में यक जुबान हैं। ठीक है, यानी इनके बाद बचा कौन? आइम्मा इस्लाम मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फुकहा और मुतकल्लिमीन। ठीक है, के जरूरियात दीन यानी इस्लाम के कतई और यकीनी मसाइल में से किसी मसले में तावीलात बात न करके उसको इस मफहूम और सूरत से निकालना जो कुरान और हदीस में मुसर्रह है, जिसमें तस्रीह हुई हुई है कुरान और मजीद, कुरान और हदीस के अंदर जिस चीज के ऊपर तस्रीह हुई हुई है ना, तो उससे निकालना, ठीक है, और तावीलात बातिला करना, ठीक है, गलत तावील करना उसकी, और जमहूर उम्मत वही समझती आई है, उम्मत की जो उलमाए कराम की मेजोरिटी है वो वही मफहूम समझती आ रही है कुरान और हदीस की इस बात का कि जिसका कि मुखालफत कर रहा है ये अपनी तावील के जरिए से। ठीक है, तो सब इस पर मुत्तफिक हैं कि इस्लाम के कतई और यकीनी मसाइल में से किसी मसले में तावील बातिला करके उसको उस मफहूम और सूरत से निकालना जो कि कुरान और हदीस में मुसर्रह है और जमहूर उम्मत वही मफहूम समझती आई है, दर हकीकत कुरान और हदीस और अकायद इस्लाम की तकजीब करना है, कुरान और हदीस की तकजीब करना है। ठीक है, हालांकि तकजीब बजाहिर नहीं लगती कि ये कुरान और सुन्नत की तकजीब कर रहा है, बजाहिर तो ये मौलवियों की तकजीब कर रहा है। ठीक है ना, वो मौलवी कोरोना वायरस और सियासी मामला के ऊपर नहीं, बल्कि जो कुरान के मानी है, जो हदीस के मानी है, जो अहकाम इस्लाम का जो है वो शक्लो सूरत है, भाई नमाज, ठीक है, तो सलात जो है वो डिक्शनरी के अंदर, अरबी जुबान की डिक्शनरी के अंदर जो है वो सलात के मानी दुआ करने के, सारे के सारे जो उम्मत है वो इस बात में मुत्तफिक है कि नहीं, सलात का मतलब जो है वो ऐसे हालत वुजू के अंदर हदस असगर और हदस अकबर की पाकी के दूर करने के बाद फिर जो है वो किसी नमाज के वक्त के अंदर तकबीर तहरीमा के साथ जो है वो उसमें दाखिल होना और जो है वो कुरान मजीद की कुछ ना कुछ तिलावत करना, फिर रुकू करना, एक रुकू करना, फिर दो सजदे करना, ये है नमाज का नाम। ठीक है, वो कहे कि नहीं, नमाज का नाम जो है वो दुआ करना है, क्योंकि अरबी जुबान के अंदर सलात का लफ्ज जो है वो दुआ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये मौलवियों की का इनकार नहीं कर रहा, ये कुरान और हदीस का इनकार कर रहा है, ये कुरान और हदीस की तकजीब कर रहा है। ठीक है, तो बज़ाहिर कोई चीज नजर आती है कुछ, और असल में वो कुछ होती है। तो वही फरमा रहे हैं कि दर हकीकत वो कुरान और हदीस और अकायद इस्लाम की तकजीब करना है। ठीक है, तो अब इल्म अकायद की मशहूर, क्योंकि जब कोई आलम दीन किताब लिखता है ना, तो फिर वो अपने मौकफ के दलील में फिर आयमा का, बड़े बड़े अकाबरीन के जो है वो अकवाल नकल करते हैं। तो इसी तरह मुहतु शफी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यहाँ पे कई सारे अकवाल नकल किए हैं, छोटे छोटे जो है वो हम पढ़ रहे हैं, बड़े जो है वो छोड़ देंगे। तो इसमें फरमाते हैं कि इल्म अकायद की मशहूर व मुस्तनद किताब मकासिद में कुफर और काफिर की तारीफ करते हुए लिखा है कि अगर कोई ऐसा हो, यानी तर्जुमा पढ़ रहे हैं कि अगर कोई ऐसा हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के इकरार के साथ साथ और शाएर इस्लाम के इजहार के बावजूद ऐसे अकायद पोशीदा रखता हो जो बिल इत्तेफाक कुफर हैं, तो उसको जंदीक के नाम से खास किया जाता है। ठीक है, तो ये तायीद ही है, ये कौल पिछली सारी बातों के जो हम पढ़ते आए हैं। रद्दुल मुख्तार में अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ने इसी मजमून की तशरीह में फरमाया है कि क्योंकि जिंदीक मलम्मा साजी करता है, ठीक है, यानी धोखेबाजी करता है, मलम्मा साजी मिक्स करता है चीजों को अपने कुफर के साथ साथ, मलम्मा साजी करता है अपने कुफर के साथ और अपने फासिद अकीदों को रिवाज देता है और निकालता है उसको सही सूरत में, यानी उसको उसका इजहार जो है ना वो बड़े अच्छे से करता है, बड़े प्यार से करता है। क्या मतलब प्यार से करता है? चुमकार करके बात करता है, राइट, या उसके ऊपर हार्ट्स बना देता है, हार्ट्स, रेड रेड हार्ट, जैसे कि हम जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर इमोजीज वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये है सही सूरत में, यानी सही सूरत में किसी गलत बात को निकालने का ये मतलब है। क्या मतलब है आप बताएं ना जरा, कि गलत बात को सही सूरत में निकालने का क्या मतलब है? ठीक है, क्या वो इमोजीज बनाता है उसके साथ, क्या जो है वो कोई साउंड इफेक्ट्स उसके साथ डाल देता है ताकि वो फिर सही सूरत नजर आनी शुरू हो जाए? आप बताएं क्या होता है इसका मतलब, कैसे किया जाता है, यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ पर फासिद अकीदे को रिवाज देने की बात हो रही है मलम्मा साजी करके। तो व्हाट इज मेंट बाय मलम्मा साजी इन दिस कॉन्टेक्स्ट? ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे जो है वो क्या नाम है, हजरत मौलाना मक्की हिजाजी साहब, उन्होंने एक मिसाल दी। ठीक है, बटरिंग, अबे बटरिंग का मतलब क्या होता है भाई? मक्खन लगाना, खूबसूरत धोखा, इजमाए कुरान। हजरत मक्की हिजाजी साहब ने इसकी एक मिसाल दी कि किसी को ना पानी बेचना है, ठीक है, उसके पास जो है ना वो पानी का स्टॉक है, वो पानी बेचना चाहता है, लेकिन उसके लिए पानी जो है वो कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, वो तो दूध वाला है तो लोग उसके पास दूध खरीदने के लिए आते हैं। ठीक है, तो वो अब किसी को कहे कि भाई तुम अगर मुझसे 1 किलो दूध खरीदोगे ना, तो तुम्हें आधा किलो पानी भी मुझसे खरीदना पड़ेगा, तो कोई तैयार नहीं होगा कि भाई पानी खरीदने के लिए मैं तुम्हारे पास को थोड़ी आया हूँ, मैं तो दूध खरीदने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। ठीक है, तो अब उसको वो आधा किलो पानी अगर बेचना हो तो वो क्या तरीका अख्तियार करेगा? वो उस पानी को दूध में मिलाएगा, पानी को दूध में मिलाएगा, और जो है ना वो दूध की कीमत थोड़ी सी या तो बढ़ा देगा ताकि वो पानी की कीमत भी उसमें एडजस्ट हो जाए, और फिर वो दूध कह के बेचेगा उसको, पानी नजर ही नहीं आता दूध के अंदर, वो तो मिक्स हो जाता है दूध के साथ। ठीक है ना, तो जो चीज लोग पसंद करते हैं उसके अंदर जिस चीज को लोग ना पसंद करते हैं मिक्स करके बेचना, ठीक है ना, तो वो दूध वाला जो है वो पानी बेचने के लिए दूध के अंदर उसको मिक्स करेगा। उसी तरीके से दीन वाला गलत अकायद को कैसे बेचेगा। ठीक है, तो उन्होंने जवाब दिया, सही उलमा को गलत शो करता है। नहीं, अभी अब उलमा को गलत शो करने की बात नहीं, अभी तो आवाम को जो है ना वो कैसे बेचेगा। उलमाए हक अच्छे अंदाज में बयान करके, तो अच्छे अंदाज में बयान कैसे किया जाता है, मिक्सिंग ट्रूथ विद फॉल्सहुड। व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट ट्रूथ को वो मेक फॉल्सहुड के साथ मिक्स करेगा। हक को बातिल से मिलाता है, फरेब। दे मिक्स दीन विद दुनिया, नहीं नॉट विद दुनिया, मिक्सिंग ईमान। भाई सीधी सीधी बात करें ना, बहुत आसान सी इसकी इसकी तरीका है। ठीक है, कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, तो भाई नकल कैसे करेंगे, तो उसके लिए अकल इस्तेमाल करेंगे तो नकल करना आसान हो जाएगा। हम ये आपको नकल करना सिखाना नहीं चाहते, हम आपको ये बता रहे हैं कि नकल के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। वो दीन की जो सही बातें हैं ना, दीन की जो अच्छी बातें हैं वो बयान करेगा, अच्छी बातें बयान करेगा, सही बातें बयान करेगा, और इन बिटवीन वो एक गलत बात भी बीच में इंसर्ट करेगा। इन बिटवीन गलत बात इंसर्ट करेगा, ऐसे करेगा जैसे दूध के अंदर पानी इंसर्ट किया जाता है, पता भी नहीं लगे। ठीक है ना, दूध तो दूध होता है ना, अच्छी चीज होती है ना, न्यूट्रिशियस चीज होती है ना, दूध बेचेगा लेकिन उसके अंदर पानी मिक्स करके बेचेगा। उसी तरीके से दीन के अंदर गलत अकायद कैसे किए जाते हैं, अच्छी बातें करेगा, सही बातें करेगा, मुत्तफिकुन अलैह बात करेगा, उसके अंदर एक बात जो है वो गड़बड़ डालेगा, एक बात गलत डालेगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को, खुसूसन आवाम को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और जो उलमा होंगे उनको पता तो चल जाएगा कि ये गलत है, लेकिन वो कहेंगे क्या हो गया, अच्छी बात है, इतनी सारी अच्छी बातें भी तो कर रहे हैं ना, इतनी सारी अच्छी बातें भी तो कर रहे हैं ना, हाँ अगर एक दो गलत बातें उसके अंदर मिक्स कर दी तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है, देखने में तो बड़ा शरीफ नजर आते हैं और जो है वो बड़ा अहले हक वाला बैकग्राउंड भी है इनका, और शक्लो सूरत भी बड़ी अहले हक वाली है, तो अब इन एक दो गलत बातों को इग्नोर कर देना चाहिए, इतना भी मुतशद्दिद नहीं होना चाहिए, इतना भी मुतशद्दिद नहीं होना चाहिए, क्या ख्याल है, गलत बात है, ऐसा नहीं होता। दीन की शक्ल में कुफर की बात करेगा, दीन की शक्ल क्या होती है भाई, अपनी तो बजाहरी शक्ल तो दीन वाली होगी लेकिन जो बात होगी ना वो भी दीनी वाली बात होगी, वो भी दीनी वाली बात होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर कुरान मजीद की तफसीर बयान हो रही है। ठीक है, अब उसके ऊपर जो है ना वो कोई वीडियो बनाई, उस वीडियो के अंदर जो है वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं लेकिन बीच में जो है वो औरत की तस्वीरें, बेलिबास औरत या बेपर्दा औरत या कम लिबास औरत। ठीक है ना, उस वीडियो में बहुत सारी अच्छी चीजें या बहुत सारी जायज चीजें, अच्छी चीजें तो खैर क्या दिखाएंगे, बहुत सारी जायज चीजें दिखा रहे हैं लेकिन एकदम से जो है ना वो एक औरत की भी उसके अंदर तस्वीर आ गई, एकदम से एक दो जो स्लाइड्स थी ना वो औरत की तस्वीर के ऊपर मुश्तमिल थी। अब आवाम जो है वो नहीं, उसको अंदाजा ही नहीं हो रहा कि ये क्या हो रहा है भाई। राइट, कुरान की तफसीर बयान हो रही है, दीन के जो है वो हकायक बयान हो रहे हैं और एकदम से ये बेपर्दा औरत की तस्वीर किधर से आ गई इसके अंदर बीच में। पीपल विल इग्नोर इट, पीपल विल इग्नोर इट। ठीक है ना, हत्ता के इवन उलमा विल, मैनी उलमा, नॉट ऑल उलमा बट मैनी उलमा विल इग्नोर इट। औरत दो चीजों से जो है ना वो दरार डाली जाती है, दो चीजों से, दूसरी आप बता दें, पहली तो मैंने बता दी औरत, दूसरी चीज क्या होती है जिसके जरिए से दराड़ डालता है शैतान। जी एग्जैक्टली, म्यूजिक, एग्जैक्टली म्यूजिक। ठीक है, ठीक है, तो दीन की बातें होंगी, हजरत का बयान होगा, मशायख का बयान होगा और नात होगी, हम्द होगी, दरमियान में मौसीकी होगी। राइट, एंड पीपल विल इग्नोर इट, पीपल विल गेट इम्यून, दे विल बिकम इम्यून ऑफ इट, इम्यूनिटी आ जाती है ना किसी चीज की, उसी तरीके से म्यूजिक के लिए इम्यूनिटी। और आप क्या आप मुझसे एग्री नहीं करेंगे कि ये इम्यूनिटी आ रही है बड़ी तेजी के साथ, दीनदार हलकों के अंदर म्यूजिक के लिए इम्यूनिटी, म्यूजिक के लिए जो है ना वो नो प्रॉब्लम वाला एटीट्यूड ये आ चुका है तकरीबन, क्या नहीं आया म्यूजिक के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, औरत, आप देखते चले जाएं, औरत के लिए भी इम्यूनिटी आ रही है। ठीक ठीक है ना। अब औरत के साथ बेपर्दगी में इख्तलात करना, औरत के साथ जो है वो बेपर्दगी में जो है वो दुनिया का काम करना, तो पहले होता था दीन का काम करना, ठीक है ना। और उसके अंदर फिर पहले तो आएंगी बुरके वालियां, पहले तो आएंगी बुरके वालियां, मर्दों के साथ बुरके वालियां मिलकर के दीन का काम करेंगी। फिर थोड़े दिनों के बाद बुरका जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता खिसकना, और वो शुरू हो चुका है। ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, अब मैं कोई नई बातें नहीं कर रहा, ये पुरानी बातें हो चुकी हैं। बुरका खिसकना शुरू होगा, खिसकते खिसकते जो है वो हिजाब के ऊपर आ जाएगा, हिजाब जिसको कहते हैं, राइट, जो कि असल में हिजाब नहीं होता, वो स्कार्फ होता है। बुरका स्कार्फ की शक्ल इख्तियार करेगा, फिर थोड़े दिन के बाद स्कार्फ भी जो है वो खिसकना शुरू, ठीक है। और हो क्या रहा है, दीन का काम हो रहा है जी, दीन की क्लासेज हो रही है जी, ठीक है ना, दीन की तब्दील हो रही है जी। तो ये दो रास्ते हैं कि जिसके जरिए से इन रोड्स क्रिएट की जाती हैं, और जब इन रोड्स बन जाती हैं ना, जब आपने दुश्मन के लिए रास्ते बना दिए अंदर आने के, औरत और म्यूजिक के जरिए से रास्ते बनाए जाते हैं, ठीक है ना। रास्ते बनाना मकसूद नहीं होता, मकसूद क्या होता है रास्ता बनाने का, मकसूद होता है कि दुश्मन एंटर हो जाए। जब दुश्मन के लिए आपने रास्ते बना दिए, दुश्मन एंटर हो गया, जब वो एंटर हो गया, बाकी काम उसने करना है, बाकी काम उसने खुद करना है। तो ये दुश्मन को एंटर करने के लिए रास्ते कौन बनाता है, ये खुला दुश्मन नहीं रास्ते बनाता, ये जो छुपा हुआ दुश्मन होता है ना, ये रास्ते बनाता है, छुपा हुआ दुश्मन रास्ते बनाता है, जो कि अंदर मौजूद होता है, अंदर से वो किले का दरवाजा खोलता है ना, किले का दरवाजा खोलता है ताकि रास्ता बन जाए किले के अंदर आने का, ठीक है। और फिर उसके बाद बाहर का दुश्मन जो होता है वो फिर अंदर आता है, और फिर उसके बाद वो सबकी तो ऐसी की तैसी कर देता है। उसके बाद बात समझ में आ रही है, कोई इख्तलाफ हो तो बताइए। इन्होंने क्या लिखा है, इन एक्सप्लेनेशन यूजिंग रेफरेंसेस ऑफ उलमाए हक एंड देन ब्रिंगिंग इन वन और टू क्रिटिकल पॉइंट्स व्हिच विल बी अगेंस्ट द उलमा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना वो एक बहुत बड़ा एक और कंफ्यूजन, ठीक है ना, जिसको के हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने डायरेक्टली यहां पे एड्रेस नहीं किया, बज़ाहिर अभी अभी तक एड्रेस नहीं किया, आगे शायद करेंगे लेकिन अभी तो नहीं किया है। वो क्या है कि इल्मी इख्तलाफ जो उलमा में होता है, किसी बात के ऊपर इल्मी इख्तलाफ उलमा के अंदर होता है, ठीक है ना, तो उलमा में इल्मी इख्तलाफ कोई नई बात तो नहीं है, सहाबा के जमाने से उलमा में इल्मी इख्तलाफ रहा है, ठीक है, किसी टॉपिक के ऊपर किसी बात के ऊपर उलमा के दरमियान इल्मी इख्तलाफ सहाबा के जमाने से रहा है, ठीक है, और हमारे अकाबरीन के दरमियान इल्मी इख्तलाफ रहा, सब में इल्मी इख्तलाफ रहा, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम अहमद इब्न हम्बल, सब में इल्मी इख्तलाफ रहा। मातुरीदिया और अशाइरिया क्यों है ये दो स्कूल्स, इल्मी इख्तलाफ की वजह से, ठीक है। लेकिन 20th सेंचुरी में जो इल्मी इख्तलाफ होता है, 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी के अंदर जो इल्मी इख्तलाफ होता है, तो अब उसमें जो है ना वो हमें एक एक्स्ट्रा चीज को देखना लाजमी है, जो कि पहले नहीं होती थी, एक एक्स्ट्रा चीज इल्मी इख्तलाफ के अंदर, वो क्या है, एक फैक्टर ऐड हो गया है 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी के अंदर, जो कि पहले नहीं होता था इल्मी इख्तलाफ के अंदर। तो इस वजह से ना आज का इल्मी इख्तलाफ और माजी के इल्मी इख्तलाफों में बड़ा फर्क हो गया है। वो क्या जी, आप बता रहे देन दुपट्टा जो बराए नाम से सर पे होता है, ऐसे सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह झूम झूम कर दीन की बातें जी, सहाबा में भी था, ब्रिंगिंग दैट डिस्कशन टू द लेवल ऑफ अवाम, ब्रिंगिंग दैट डिस्कशन टू द लेवल ऑफ अवाम। अच्छा, अकायद के हवाले से कोई गलत बात तो नहीं, क्या मतलब, आजकल नहीं, आजकल नहीं, अकायद के दौरान नहीं भाई, हम इल्मी इख्तलाफ की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वही इल्मी इख्तलाफ जो पहले भी था और आज भी वही इल्मी इख्तलाफ है। तो पहले की भी इल्मी इख्तलाफ जो था वो फसाद का सबब नहीं था, वो फसाद का सबब नहीं था। तो इसका मतलब क्या ये है कि आज का इल्मी इख्तलाफ भी फसाद का सबब नहीं होगा, आज का इल्मी इख्तलाफ भी फसाद का सबब नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, आज का इल्मी इख्तलाफ फसाद का सबब हो सकता है, क्यों, ठीक है, उसकी वजह क्या है, नाउ इज द टाइम ऑफ फितने दज्जाल, ये तो एक बहुत ही सुपरफिशियल किस्म का आंसर है ना। इज दिस अटैक लाइक ट्रॉय और ट्रोजन हॉर्स अटैक? जी ट्रोजन हॉर्स अटैक इसी को कहते हैं, ट्रोजन हॉर्स या ट्रॉय वाला जो पूरी कहानी। बदतमीजी और बेअदबी? नहीं, बदतमीजी और बेअदबी ना हो बिल्कुल भी, बिल्कुल दोनों तरफ बड़ा अदब, बहुत ही अदब का ख्याल रखा जा रहा है, इधर भी अदब का ख्याल रखा जा रहा है, उधर भी अदब का ख्याल रखा जा रहा है, और इल्मी इख्तलाफ है बस, ठीक है ना भाई। हमारे असलाफ में भी इल्मी इख्तलाफ था, सहाबा में भी इल्मी इख्तलाफ था, बड़े बड़े अकाबरीन में भी इल्मी इख्तलाफ था, आइमा मुहद्दिसीन में भी इल्मी इख्तलाफ था, फुकहा में भी इल्मी इख्तलाफ था, तो आज भी इल्मी इख्तलाफ है। व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट? व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट? क्यों परेशान हो रहे हो इतना? फर्क, व्हाट इज ए पॉसिबल फर्क, मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरी है कि फर्क, लेकिन एक फर्क है जिसका कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। दिस एरा इज टू फार फ्रॉम प्रोफेसर असलम, ये तो कोई जवाब ना हुआ भाई। एवरी एरा इज टू फार फ्रॉम प्रोफेसर असलम, वो तो फिर आपके रेफरेंस, इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना। आजकल लोग उलमा से मुतनफिर हो जाते हैं, नहीं ये तो कोई बात ना हो भाई, चूंकि उलमा से मुतनफिर हो जाते हैं इस वजह से आप जो है वो इल्मी इख्तलाफ खत्म कर दें, नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, इन इख्तलाफ को खत्म कर दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो जो चीज़ पॉसिबल नहीं है ना, उसकी तवक्को रखना है, उसकी डिमांड करना भी कोई सही बात नहीं। क्वालिफिकेशन, अब नाम, अब आम आदमी भी एतराजात और इख्तलाफात करता है, अकीदा तक्वा और नियत? नहीं, ठीक है। तो फितना दज्जाल वाला जो जवाब था ना, वो बहुत ही हाई लेवल और बहुत ही सुपरफिशियल जवाब, ठीक है। इसका जो है ना वो थोड़ा सा लो लेवल पे आए, या थोड़ा सा जो है ना वो उसकी तफसील में जाए, तो वो ये होगी कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, तो ये दौर जो है ना, ये फितने दज्जाल का तो दौर है, लेकिन फितने दज्जाल के दौर जो है वो उसकी समझने के मैनिफेस्टेशन कहते हैं ना उसको, कि इसका इजहार किस शक्ल में हो रहा है, कि ये हम सारे के सारे मुसलमान हैं, ये फितने दज्जाल के दौर के अंदर क्यों फंसे हुए हैं, क्यों हम ऐसे हो गए हैं कि जी फितने दज्जाल हमारे ऊपर गालिब आ चुका है। उसकी वजह जो है ना वो बड़ी सादा सी और बड़ी सिंपल सी है, कि हम इस वक्त जो है ना वो अहदे गुलामी से गुजर रहे हैं, हम इस वक्त अहदे गुलामी से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना वो हमारे ऊपर जो दीन मुखालिफ कुवतें हैं, जो कि इस दीन को खत्म करने का एजेंडा, वो पहले मغلوب थी, वो पहले इस्लामी सरहदों के अंदर मौजूद नहीं होती, हो गया लगता है चलाने वाले। तो उस जमाने में क्या आपके जो 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 यानी आपकी बाग डोर कहते हैं ना, बाग डोर, वो काफिरों के हाथ में थी, ठीक है, या काफिरों के जो बिल्कुल उनके पले हुए हैं उनके हाथ में थी? नहीं, ना सहाबा के दौर में जो मुस्लिम मुआशरा था, जो उलमाए कराम थे, वो उनसे यानी ऐसे नहीं थे, ठीक है, क्योंकि उस वक्त वो दौरे गुलामी नहीं था। उसके बाद 1300 साल तक, 1300 साल तक जो दीन के उलूम की खिदमत हुई है, ठीक है, दीन के उलूम के अंदर जो है जो तफसीर का की खिदमत हुई है, या जो हिफाजत की खिदमत हुई है, वो सारा के सारे जो काम हो रहा था ना उस वक्त जो है वो जो इस्लामी सल्तनत थी उसकी जो बाउंड्रीज थी ना, काफिर उनसे बाहर रहते थे, ठीक है ना, अंदर अगर आते भी थे ना तो छुप छुपा करके बड़ी मغلوب शक्ल में, और बड़े जो है ना वो मेहनत करके थोड़ी थोड़ी सी कुछ जो है वो अपनी हरकतें करने के काबिल होते थे, अदरवाइज दे वर नॉट एबल टू डू इट। जबकि इस वक्त क्या हाल है, हकीकत अगर आप तस्लीम करने के लिए तैयार हो, तो हकीकत ये है कि इस वक्त जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हाल, इस वक्त हाल बिल्कुल मुख्तलिफ, ठीक है, तो इस वजह से जो है ना, इस दौर के अंदर जो इल्मी इख्तलाफ उठाया जाता है ना, तो उसमें पहले चेक कर लेना चाहिए कि भाई जो इख्तलाफ कर रहे हैं, जो कि अपनी जो है ना, वो एक डिफरेंट किस्म की एक चीज लेकर के आ रहे हैं, तो वो पीछे जो है ना, वो कौन है, पीछे कौन है इनके। ठीक है, ऊपर से तो अभी ठीक लग रहा है सब कुछ, लेकिन पीछे अगर मामला खराब है ना, तो दिस मीन्स के ये जो इस वक्त जायज इल्मी इख्तलाफ है ना, ये थोड़े दिनों के बाद फिर ये नाजायज की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, ये नाजायज की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस वक्त हम जो है ना, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ दौर से गुजर रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना, ये इन रोड्स बनाना, ये फिर बड़ी खतरनाक चीज होती है, और ये इन रोड्स जो बनाए जाते हैं, ये फिर मौसीकी और औरत के जरिए से बनाए जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना, वो नजरियाती तौर पर दुश्मन दाखिल हो जाते हैं, और फिर सारे के सारे नजरिए का जो है ना, वो फिर बेड़ा गरक कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद की जो इबारत है कि हाँ, जिंदगी जो है मुलमा साजी करता है अपने कुफर के साथ, और अपने फासिद अकीदों को रिवाज देता है और निकालता है उसको सही सूरत में, ठीक है, यानी बड़ी अच्छी अच्छी बातों के दरमियान उसको मिक्स करके जो है वो पेश करता है, और यही मानी है अबतान कुफर के पस वो जिहार के मनाफी नहीं है और ना गुमराही की तरफ दावत देने के मनाफी है। यानी इबारत को हम आगे बढ़ना था, हमने अगली जो हजरत शाह वली रहमतुल्लाह, शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की जो इबारत है, वो फिर उसके अंदर काफी सारी जो है ना, वो यानी टेक्निकलिटीज हैं जो कि इस मजलिस के अंदर मुनासिब नहीं होगा समझाने की कोशिश करना, क्योंकि फिर वो बहुत लंबी चल जाएगी। आपके पास किताब उम्मीद है कि मौजूद होगी, अगर आप चाहें तो अपना मुताला जो है खुद से कर लें, कोई चीज पूछनी हो तो वो आप पूछ सकते हैं ऑफलाइन। बाकी इसके बाद अगली बार जो इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे, वो होगी पेज नंबर 44 के ऊपर, पेज नंबर 44, जिसमें के हजरत ने फतावा इब्ने तैमिया से यहाँ पे नकल किया है और उसका तर्जुमा है, तो वो फिर इंशाल्लाह, क्योंकि इस क्लास का वक्त खत्म हो गया है, अगली क्लास के अंदर फिर यहाँ से, जो कि इंशाल्लाह जुमे के बयान में ही होगी, तो वो फिर हम यहाँ से पढ़ेंगे। किसी ने कोई मैसेज लिखा था, वो मैं जरा एक नज़र देख लूँ, क्लास में पहले चैट रूम में बंद हो गई थी, उसको दोबारा खोलना पड़ रहा है। जदीद तालीमी निज़ाम भी इन रोड्स का बड़ा जरिया है, ठीक है, बिल्कुल, वो समझ लें कि सबसे बड़ा जरिया है इन रोड्स बनाने का, जदीद तालीमी निज़ाम, ठीक है, और बस वो जदीद तालीमी निज़ाम जो है ना, वो जवाज़ की शक्ल में वो आया है हमारे यहाँ कि भाई क्या इसमें हर्ज क्या है, हमारा दीन तो इल्म के खिलाफ नहीं है, तालीम के खिलाफ नहीं है, और ये जो तालीमी निज़ाम है ये तो न्यूट्रल निज़ाम है, ये तो जो चाहे उसको जैसे इस्तेमाल कर सकता है, इस तरह के सारे दलाइल के जरिए जो है ना, वो इसको बिल्कुल हमने जो है वो ऐसे तस्वुर किया है कि जैसे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता इंसानों के जहनों के ऊपर, इंसानों की सोचों के ऊपर, और इस तरीके से हमने इसको जो है ना, बिल्कुल जो है ना, वो अपने अंदर दाखिल कर लिया है, अपने मुआशरे के अंदर, अपने रग रग रेशे रेशे के अंदर दाखिल कर लिया है, और इस तालीमी निज़ाम ने एग्जैक्टली वही काम किया है जिसके लिए इसको बनाया गया था, जिसके लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। और देख लें, इस वक्त इस तालीमी निज़ाम के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, कोई ऑर्गेनाइज एफर्ट नहीं हो सकती इसके खिलाफ। हाँ, इंडिविजुअली लोग जो है वो होम स्कूलिंग के जरिए से, प्राइवेट स्कूलिंग के जरिए से, क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए से इंडिविजुअली तो कर रहे हैं, या छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर तो इसके खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टिवली हम इतने गुलाम हैं, इतने मغلوب हैं और इतने मजबूर हैं कि हम कलेक्टिवली इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते इसके खिलाफ, ठीक है। तो ऐसा मामला जो है ना, वो 1300 साल में नहीं था, जो कि आजकल जिस मामले से, आजकल से मुराद पिछले 150 साल 200 साल से, हम जो है ना, वो जब से आपकी ये खत्म हुई है बरे सगीर के अंदर भी, और खिलाफत भी खत्म हुई है, हम भी खिलाफत के दाई नहीं है भाई, हम तो अपने अपने 5 फुट के जिस्म के ऊपर जो है वो खिलाफत कायम नहीं कर पा रहे, तो हम दुनिया में कहाँ से खिलाफत कायम करेंगे, वो तो अल्लाह ताला कायम करेगा जब करेगा, हम तो अपने 5 फुट के ऊपर अल्लाह की खिलाफत कायम नहीं कर पा रहे। लेकिन हकीकत यही है कि जब तक वो मामला था, तो उस वक्त तक जो है ना, वो इन रोड्स इस तरीके से नहीं बन पाती थी, जब वो मामला खत्म हो गया तो अब इट वॉज फ्री फॉर ऑल। हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व फ्रॉम दीज टू वेपन्स ऑफ शैतान, फ्रॉम दीज टू वेपन्स ऑफ शैतान, विच टू आर यू टॉकिंग अबाउट? म्यूजिक एंड वुमेन, ये जो इन रोड्स म्यूजिक और वुमेन के जरिए से बनाई जाती है भाई, शरीयत का हुक्म है, मौसीकी हराम है तो बस वो हराम है। अब चाहे जो भी, चाहे हजरत जी का बयान आ रहा हो मौसीकी के साथ, हम नहीं सुनेंगे। हम मौसीकी के बगैर भी मौजूद हैं, वो क्यों नहीं सुने, राइट? ये हरगिज हरगिज नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे पीर साहब का बयान आ रहा है तो कोई बात नहीं, मौसीकी अगर उसके अंदर है कोई बात नहीं। नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। पीर साहब के बयान मौसीकी की वजह से मौसीकी जायज नहीं हो सकती। अब वो किसने डाली है वो अल्लाह बेहतर जानता है किसने डाली है, लेकिन हम, हमारे लिए तो वो जायज नहीं है ना। उसी तरीके से जो है वो पीर साहब का को कोई क्लिप किसी ने बना दिया इंटरनेट के ऊपर, उसके अंदर जो है वो औरतें डालनी, हम नहीं सुने, हम नहीं देखेंगे उस क्लिप को, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं हम उस क्लिप को देखेंगे जिसके अंदर जो है वो किसी ने औरतों के इमेजेस डाले हुए। तो दीज आर द टू वेज, दिस इज द ओनली वे टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम द वेपन्स ऑफ शैतान, कुरान के हुक्मों के ऊपर अमल करना, ठीक है ना, अपने कानों की भी हिफाजत करना, अपनी निगाहों की भी हिफाजत करना, और बस उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एक्सट्रीम मिसाल से बात समझा दी है कि इवन हमारे हजरत का भी कोई बयान होगा ना जिसके अंदर ऐसी चीजें होंगी, हम उसको भी नहीं जायज करार देंगे, हम उसको भी अपने लिए जायज नहीं करेंगे। तो फिर किसी और का बयान हो, किसी और की बात हो, किसी और की चीज हो, वो कैसे हमारे लिए जायज हो सकती, ठीक है। तो मिसाल देख करके समझाया, वरना ऐसा नहीं है कि नाउज बिल्ला हमारे हजरत के ऐसे कोई क्लिप्स वगैरह आ रहे हैं, लेकिन अगर खुदा ना खासा किसी ने बना भी दिया ना, हम उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है जी। अल्लाह ताला से दुआ की बात की समझ की तौफीक अता फरमाए, हम सब के और हमारे आने वाले नस्लों के ईमान की हिफाज़त फरमाए। वा आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।